हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। एक तरफ जहाँ हरलीन ने युग और कृषा की मौत का अनाउंसमेंट करने के लिए माफिया मीटिंग रखवाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ युग और कृषा आखिरी पड़ाव को बात करने के बारे में सोच रहे थे। युग भले ही सबसे दूर था, लेकिन उसके पास हर एक इंसान की न्यूज़ थी। हालांकि वो किसी के टच में नहीं था, यहां तक कि मलिक के भी नहीं, फिर भी उसे हर एक न्यूज़ के बारे में पता था। युग को हरलीन की रखवाई की मीटिंग के बारे में भी पता चल गया। कृषा उस समय सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी, जबकि युग बाहर बैठा अपने आईपैड में कुछ कर रहा था। जैसे ही उसे हरलीन की रखवाई गई मीटिंग के बारे में पता चला, उसके फेस पर ईविल स्माइल थी। ग्रैंड एंट्री तो लेना बनता है, पर उससे पहले सातवां पड़ाव पार करूंगा, युग ने खुद से कहा। तभी कृषा नाश्ते की प्लेट के साथ युग के पास पहुंची। कृषा ने पैनकेक्स बनाए थे, उसने प्लेट युग के सामने रख दी और उसके पास बैठते हुए बोली, स्माइल क्यों कर रहे हो? फिर से तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है क्या? हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग है और मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, युग ने जवाब दिया और फिर पैनकेक खाने लगा। खाते हुए उसने कृषा के चेहरे की तरफ देखा और ईविल स्माइल करते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, जैसे भगवान पर यकीन रखते हैं वैसे ही इस डेविल पर भी रखो, लो तुम भी पैनकेक खाओ। कृषा युग को कुछ जवाब देती उससे पहले युग ने कृषा के होठों को कैप्चर किया और उसे अपने मुंह से पैनकेक खिलाने लगा। कुछ देर में कृषा युग से अलग हुई और उसे मारते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, मुझे ऐसे भी नहीं खाना था। लेकिन मुझे ऐसे ही खाना था, युग ने जवाब दिया और फिर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगा। ब्रेकफास्ट करते हुए अचानक कृषा ने पूछा, अच्छा युग, हम अगले पड़ाव पर कब जाएंगे? बस कल ही समझो, ये जगह मुंबई में है, तो थोड़ा सोच समझ कर जाना होगा और लोगों की नज़रों से खुद को बचाना होगा, युग ने जवाब दिया। फिर उसने कृषा की तरफ देखते हुए कहा, बस दो घंटे की बात है, उसके बाद अगले पड़ाव के लिए निकल जाएंगे। तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे हो रही है, क्योंकि उस पार्टी में ग्रैंड एंट्री भी तो लेनी है। मुझे हर एक शख्स के चेहरे की तरफ देखना है, उनके हारे हुए चेहरे की तरफ, जिन्होंने युग राणा को कमज़ोर समझने की गलती की। कमज़ोर तो तुम किसी तरह से नहीं हो, कृषा युग की तरफ देखकर तिरछी निगाहों से कहा, जिस पर युग सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। लगभग दो घंटे बाद कृषा और युग वापस मुंबई जाने के लिए निकल गए थे। आखिर उन्हें सातवां पड़ाव जल्द से जल्द पार जो करना था। इस बार सिक्योरिटी होने की वजह से युग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ी। वहां जाने से पहले युग ने कृषा से कहा, छठे और सातवें पड़ाव पर किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया, पर जल्दबाजी में पूछना भूल गई, दादू ने छठे और सातवें पड़ाव को इस तरह लापरवाही से क्यों रखा है? यहाँ इन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर फिर भी दादू को कुछ तो सिक्योरिटी लगानी चाहिए, ऐसे हमारा खजाना कोई चोरी करके ले गया तो, कृषा ने जवाब दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि छठे और सातवें पड़ाव के बारे में खुद उन्हें भी नहीं पता। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, युग ने कहा और कृषा का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों इस वक्त एक क्रूज कर थे। वो एक प्राइवेट क्रूज था जो समुद्र के बीचों बीच था। युग कृषा को लेकर वहां पर गया। वो क्रूज कुछ आदित्य सिंघानिया का था, इसलिए कृषा को देखते ही सब नीचे की तरफ झुके और उसका स्वागत किया। कृषा ने उन सब की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना है, तो कोई यहाँ पर नहीं आएगा। अगर गलती से भी किसी ने मेरे यहाँ आने की खबर बाहर लीक की या मेरी फैमिली में से किसी को भी बताया है, तो उसकी कीमत तुम सबको भुगतनी पड़ेगी, एक एक की जान जाएगी। कृषा काफी सख्त आवाज में बात कर रही थी। युग ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, ताकि किसी के वहां मौजूद नहीं होने पर उनका काम आसान हो जाए। कृषा की ऑर्डर मिलते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। युग ने उनकी नजरों को समझ लिया था, तो वो सर्द आवाज में बोला, मेरे तीन गिनने तक अगर कोई यहीं पर रहा तो उसकी लाश यहाँ से वापस जाएगी। मैं तुम सबको होस्टेस बनाकर नहीं रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब अपनी मनमानी करोगे। कृषा की धमकी का उन पर इतना असर नहीं हुआ था जितना युग की धमकी का हुआ था। वो एक एक करके वहां से हटने लगे। उनके हटते ही युग ने कृषा से कहा, ये जगह काफी रोमांटिक है, मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा? चलो ना पहले कुछ क्रिएटिव करते हैं, बाद में। युग की बात पूरी होती उससे पहले कृषा बीच में चिल्लाते हुए बोली, अब बस भी करो, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं और इन सब से फ्री हो जाते हैं। वैसे भी मैं बहुत बोर हो गई हूँ और मुझे एक अच्छी नींद चाहिए। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, बेडरूम में चलते हैं, कुछ क्रिएटिव करने के बाद नींद भी अच्छी आएगी, युग ने ईविल स्माइल करते हुए कहा। कृषा ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और इधर उधर अगले पड़ाव का खजाना देखने लगी। युग ने उसे देखकर सर हिलाया और फिर बेडरूम में जाने लगा। उसने अंदर जाते हुए तेज आवाज में कहा, मेरे साथ चलो, ये सब देखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम बेडरूम में क्यों? बोलते हुए कृषा हो गई, क्योंकि युग अंदर चला गया था। कृषा फिर चिढ़ते हुए उसके पीछे आई।
प्राइवेट क्रूज का वो बेडरूम काफी शानदार था। वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थे। इतना शानदार तो किसी बड़ी कंट्री के 5-स्टार होटल का रूम भी नहीं होता था जितना वो रूम था। युग ने इधर उधर देखा और फिर सामने उसे एक अलमारी नजर आई। उसने चाबी से अलमारी को खोला तो वो खिसक गई और पीछे एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। युग और कृषा दरवाजे से अंदर गए तो वो 7वें पड़ाव के उस खजाने तक पहुंच चुके थे जिसके लिए जिंदगी युग माफिया किंग बन सकता था। उन्होंने अंदर की तरफ देखा तो युग के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, तो वहीं कृषा का मुंह बना हुआ था।